है आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक समस्याओं का स्थानीय समाधान ढूंढने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ की पहली शासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने उन बाधाओं की पहचान करने को कहा जो अनुसंधान इकोसिस्टम की राह में बाधा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाएं और शोध को मौजूदा समस्याओं के नए समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संस्थानों के उन्नयन और मानकीकरण का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने अनुसंधान और विकास की प्रगति को ट्रैक करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों की एक सूची विकसित करने और एक डैशबोर्ड विकसित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय को विश्वास होना चाहिए कि उनके प्रयासों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। बैठक के दौरान शासी बोर्ड ने उन विश्वविद्यालयों को जोड़कर हब और स्पोक मोड में एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया जहां अनुसंधान प्रारंभिक चरण में है और उन्हें मेंटरशिप मोड में शीर्ष स्तरीय स्थापित संस्थानों के साथ जोड़ा गया है। इस फाउंडेशन की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पर की गई थी। इसका उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों कॉलेजों अनुसंधान संस्थानों तथा विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की साइबर अपराध से निपटने के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना है। नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बगैर संभव नहीं है। श्री शाह ने कहा कि डिजिटल लेनदेन और डिजिटल आंकड़ों का इस्तेमाल देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस कारण साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। श्री शाह ने कहा कि हाल ही में प्रभावी 3 आपराधिक कानून देश में साइबर अपराध से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान रखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी से वृद्धि हो रही है और 2030 तक इसकी वार्षिक बिक्री 1 करोड़ हो जाएगी। इससे 5 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 30 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। श्री गडकरी ने कहा कि 400 स्टार्टअप ने दो पहिया वाहनों का विनिर्माण शुरू किया है। श्री गडकरी ने ऑटोमोबाइल उद्योग से कहा कि वे नई स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए नए तरीके तलाशें। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से है। देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान 6.8% है। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि सस्टेनेबिलिटी अब विकल्प नहीं बल्कि धरती के कल्याण के लिए जरूरी है। हरित इस्पात रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस्पात जैसे क्षेत्र का पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसलिए सस्टेनेबिलिटी के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने जुलाना विधानसभा सीट से कैप्टन योगेश बैरागी को ओलंपियन विनेश फोगाट के खिलाफ खड़ा किया है। कृष्णा गहलावत राय सीट से चुनाव लड़ेंगी। बिमला चौधरी पटौदी से और प्रदीप सांगवान बरोदा विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। नसीम अहमद को फिरोजपुर झिरका से और इराज खान को पुन्हाना विधानसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस पैरालंपिक्स खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए आज नगद पुरस्कारों की घोषणा की। दिल्ली में पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में खेल मंत्री ने बताया कि स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख, रजत पदक जीतने वालों को 50 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। मिश्रित टीम स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 22.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।